मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे बनना तो अब टीचर ही है। तुम नहीं फेस कर सकती लोगों को कभी भी, तुम इतनी मोटी हो कि पता नहीं तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। बाकी लोग बोलते थे कि मैं आवारा हूँ, मैं जगह जगह घूमती हूँ, लड़कियों के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो लोग मेरा डेमो तक नहीं लेते थे, मुझे पढ़ाने का मौका तक नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास्ट को देख के, मुझे देख के वो लोग मना कर देते थे। वो एक टर्निंग फेज था मेरी लाइफ में, दो डायरेक्शंस थे मेरे सामने। उसके बाद हेलो दोस्तों, मेरा नाम निमिषा बंसल है, मैं एक टीचर, यस इस बात को मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ, मैं एक टीचर और एक एडुकेटर हूँ। अब तक मैं लाखों बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मैं रोज़ बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने स्कूल डेज में वापस जाती हूँ तो मुझे याद आती है वो निमिषा जो बहुत डरी डरी रहती थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह थी कि मैं बहुत मोटी थी। वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो चाहे कितने भी पढ़ाई में कितने भी अच्छे हों, बट सोसाइटी उनको उनके वज़न पे, उनके रंग पे जज करती है। मैं भी उन्हीं में से एक थी। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो आज मैं अपनी इस कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी कि मैंने उस डर को कैसे ख़त्म किया और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया। तो मेरी कहानी शुरू होती है मथुरा जैसे एक छोटे शहर से। मेरा जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। बचपन से ही मैं एक टीचर बनना चाहती थी। जब मैं इसके बारे में लोगों को बताती थी तो लोग मुझसे बोलते थे कि टीचर क्यों बनना चाहती हो, टीचर बनने में क्या रखा है, जिन लोगों की जॉब नहीं लगती है वो लोग टीचर्स बनते हैं, और जो लड़की इतना डरती है, लोगों से बात नहीं करती है, इतनी इंट्रोवर्ट है, वो टीचर कैसे बन पाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलती थी। और शायद मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा मोटा होना सोसाइटी को इतना खलता था कि मुझे बहुत सारे ताने उससे रिलेटेड भी मारे जाते थे कि तुम नहीं फेस कर सकती लोगों को कभी भी, तुम इतनी मोटी हो कि पता नहीं तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारे तुमसे, इनफैक्ट एक बार तो मुझे ये ताना भी सुनने को मिला था, मुझे याद है, कि तुमसे शादी कौन करेगा। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों की वजह से मैं अपने ऊपर डाउट करने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग अपनी बातों पे हंस रहे होते थे, मुझे लग रहा होता था कि वो मेरी बातों पे हंस रहे हैं, फिर मुझे बाद में पता चलता था नहीं, वो किसी और टॉपिक पे हंस रहे थे। इस लेवल का मेरे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, इस लेवल का मैं अपने ऊपर डाउट करने लग गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ थी कि मैं पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत अच्छी थी। वो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जिनको सोसाइटी भले ही एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहते हैं, मैं उस वाली कैटेगरी की स्टूडेंट थी। हमेशा क्लास में फर्स्ट आना, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, किसी से बात नहीं करना, बस अपनी अपनी पढ़ाई में लगे रहना, आई वॉज दैट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। और जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं, हमेशा से उनको एक सपना दिखाया जाता है। सपना होता है IIT क्लियर करने का, सपना होता है IIT की तैयारी करने का। और मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे भी वही सपना दिखाया गया कि तुम्हें IIT में जाना है, तुम्हें IIT में पढ़ाई करनी है, तुम्हें IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना है और तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो वो सपना मैंने भी देखना स्टार्ट कर दिया। मैं भी अपने आप को IIT में पढ़ता हुआ इमेजिन करने लग गई। उस टाइम पे क्या होता था कि 2 साल की कोचिंग होती थी। बंसल क्लासेस कोटा में बहुत फेमस कोचिंग क्लास थी। वहाँ पे जाने के लिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन करवाने का ठान लिया। एक तो हम एक ऐसे शहर से थे जहाँ पे लड़कियों को कभी भी बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था, सोसाइटी इस चीज़ के एकदम अगेंस्ट थी। बट मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया, सोसाइटी के खिलाफ गए, कैसे तैसे करके मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मनाया। इनफैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी हम लोगों की उस टाइम पे। पापा ने, मुझे याद है, उस समय बैंक से लोन लिया और मम्मी ने भी अपनी कुछ सेविंग्स, जितनी भी उनकी सेविंग्स थी, उन सबको लगा के मुझे कोटा भेजा। मुझे याद है जिस दिन मैं सामान पैक कर रही थी अपनी क्लासेस के लिए, अपने वहाँ कोचिंग क्लासेस के लिए, वहाँ जाने के लिए मैं सामान पैक कर रही थी, उस समय मैं सिर्फ सामान नहीं पैक कर रही थी, उस समय मैं अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों को पैक कर रही थी, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पैक कर रही थी। मैंने कोटा जाके अपनी तैयारी स्टार्ट की, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हम कितनी भी मेहनत कर लें, ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती है, ज़िंदगी की अपनी खुद की प्लानिंग होती है। तो दिसंबर का वो दिन आया, दिसंबर की बात है, रात के 9:30 बजे मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी तू कल घर आ जा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, उसने मुझे क्यों बोला ऐसे कि तू घर आ जा। उसने मुझे बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तू घर आ जा, मुझे नहीं पता, मैं तुझे आके सारी की सारी बातें बताऊँगा। मैं अगले ही दिन जनशताब्दी ट्रेन होती थी, अगले ही दिन वहां से मैंने सामान पैक किया और मैं घर आ गई। उस इंसिडेंट को मैं और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, हाँ, बट वो एक टर्निंग फेज था मेरी लाइफ में। दो डायरेक्शंस थे मेरे सामने कि मैं अपने सपने को पूरा करूँ, इनफैक्ट वो मेरा सपना नहीं था, वो सपना जो मुझे दिखाया गया था, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँ या यहाँ पे अपने पेरेंट्स की केयर करूँ। तो उनमें से मैंने अपने पेरेंट्स की केयर करना ज़्यादा ठीक समझा। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वो एक लो फेज था लाइफ का, जो थैंक गॉड गुजर गया और बहुत जल्दी गुजर गया। उस फेस पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो चीज़ ये थी कि आप जो प्लान करते हो, आप जिस हिसाब से चाहते हो ज़िंदगी चले, ज़िंदगी कभी भी कोई भी टर्न ले सकती है, कभी भी कुछ भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। और वहाँ पे मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। पुरानी बातों को याद करके, उनके ऊपर रिपेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ो। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। जी, मथुरा के ही एक कॉलेज में, जीएलए कॉलेज का नाम था, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। जब आप अपनी ज़िंदगी में रॉक बॉटम हिट करते हैं तो आप ऊपर आने के लिए और ज़्यादा बेताब हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और डिसीजन लिया, अपने आप को बदलने का, खुद के ऊपर बहुत काम करने का, जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर था उससे बाहर आने का, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने अपने हर एस्पेक्ट को चेंज कर लिया। हालांकि मैं दिखने में अच्छी हो गई थी, मेरा वेट जो 85 केजीज था उसको मैं कम करके 52 पे ले आई थी विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर। लेकिन एक चीज़ थी जो मेरे अंदर अभी भी थी, मैं लोगों से बात करने में अभी भी डर रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अपनी बॉडी के ऊपर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मिटाने के बाद, अपना वज़न कम करने के बाद, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के बाद भी मैं क्यों लोगों से डर रही थी, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही थी। तब सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो मुझे एक मौका मिला। हमारे कॉलेज में एक NGO था, उड़ान नाम से वो NGO था, वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे पढ़ाने की। फर्स्ट डे मैं वहाँ पे गई, पहला दिन था, मुझे आज भी वो दिन याद है। एक क्लासरूम था, मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गई, लगभग वहाँ 20 बच्चे थे। मैंने उनको पढ़ाया, मैंने उनको ग्रामर पढ़ाई, मैंने उनको टेंसेस पढ़ाए। मैंने उससे पहले कभी कुछ नहीं पढ़ाया था, मैंने कभी पढ़ाई नहीं थी, पर बचपन की यादें मुझे याद थी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। उसके बाद मैं एक नई दौड़ में लग गई थी, मैं एक IIT की दौड़ में लग गई थी, जिस दौड़ में मैं बुरी तरीके से हार गई थी। वो पहला दिन जब मैं पढ़ाने गई, मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, उन बच्चों को समझ में आ रहा है, वो लोग स्माइल कर रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं, मुझे अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी मिली, वो खुशी जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं वहाँ से बाहर निकली, मैं क्लास से बाहर गई, मैंने अपनी और क्लासेस अटेंड की, मैं अपने घर गई, लेकिन वो जो स्माइल थी वो मेरे फेस पे कॉन्टिन्यूसली बनी हुई थी। मुझे लग रहा था आज मैंने ऐसा क्या काम किया है जो मुझे इतनी खुशी मिल रही है। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी का पैशन है, ये चीज़ है जो मुझे खुशी देती है। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे बनना तो अब टीचर ही है, चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले, चाहे ज़माना कुछ भी बोले, मुझे टीचिंग ही करनी है। उस समय मैं एक दिन घर आई वापस, मेरे पेरेंट्स को पता था कि जब IIT का मेरा सपना टूटा था तो कितना दुख उन्हें हुआ था, कितना दुख मुझे हुआ था। उन्होंने मुझे पुश करना स्टार्ट कर दिया कि बेटा तुम बीटेक IIT से नहीं कर पाई, तुम एमटेक IIT से करो और तुम गेट एग्ज़ाम की तैयारी करो। मैंने गेट एग्ज़ाम दिया, मैंने कैट एग्ज़ाम दिया, मैंने MCAT एग्ज़ाम दिया, मैंने SSC CGL एग्ज़ाम दिया, मैंने SBI PU दिया और इस बार मैंने सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। इन सारी चीज़ों में मुझे एक बात याद थी कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं NGO के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ, और मुझे एक टीचर ही बनना था। उस समय मेरी एक सर से बात हुई, वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से MBA कर लो। तो मैंने बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया और वो था MBA। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैंने अपनी MBA की डिग्री ली। सेकेंड ईयर में हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट हुए। मैं टीचिंग कर रही थी, मैं टीचर बनना चाह रही थी, लेकिन ज़िंदगी ने फिर से अपने हिसाब से चाल चल दी थी। मेरा प्लेसमेंट हो गया, मुझे बहुत अच्छे पैकेज पर एक बहुत अच्छी जॉब मिली। जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, अपने फ्रेंड्स को बताई, दे वर वेरी हैप्पी फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत खुश थे। लेकिन खुश कौन नहीं था, खुश मैं नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी के हिसाब से मैं फिर से चलने वाली थी। जिंदगी का कहना था नहीं, तुम्हें कुछ और करना है। 3 महीने मैंने जॉब की, इनफैक्ट 3.5 महीने मैंने जॉब किए। मैं कर रही थी जॉब, अच्छा पैसा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट अंदर से खुशी नहीं हो रही थी। लोगों को, बाहर की दुनिया को लग रहा था कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत इस्टेब्लिश्ड हूँ, बट वो खुशी मुझे नहीं थी। एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने एक फ्रेंड से बात करके रेजिग्नेशन दे दिया। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, सभी लोग बहुत शॉक्ड हुए, मैं वापस मथुरा चली गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बार बोला कि यू टेक बैक योर रेजिग्नेशन, आप वापस जाओ, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं अब ज़िंदगी को और अपनी लाइफ नहीं चलाने दे सकती थी। मैंने मथुरा में रह के ही वहाँ के एक कॉलेज को, BSA कॉलेज था, उसको ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर की तरह मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। साथ के साथ, क्योंकि मैंने SSC CGL और SBIPO खुद क्वालिफाई किया हुआ था, मैंने मथुरा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाना स्टार्ट किया। PG कैंपस वॉज एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं SSC और बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। वहाँ से मेरे टीचिंग करियर को एक नया डायरेक्शन मिला। मैंने अपना एक खुद का इंस्टीट्यूट भी ओपन किया मथुरा में, लेट्स लर्न इंस्टीट्यूट, लेट्स लर्न के नाम से, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी देना स्टार्ट किया। मथुरा जैसे शहर में एक लड़की का एक इंस्टीट्यूट खोलना और लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोल सकते हैं इसके अगेंस्ट भी खड़े हुए कि लड़कियों का काम ये नहीं होता है, लड़कियों का काम होता है घर पे बैठना, लड़कियों का काम होता है जब शादी की एज होके हो जाना तो शादी करना। बाकी लोग बोलते थे कि मैं आवारा हूँ, मैं जगह जगह घूमती हूँ, लड़कियों के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, जगह जगह घूमना, क्लासेस देना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देना। बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट बात करते थे, बहुत सारे लोग मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि क्यों इतना फ्रीडम दे रखा है अपनी बेटी को, क्यों इतनी आज़ादी दे रखी है अपनी बेटी को। लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा थे, हर स्टेप पे वो मेरे साथ थे, हर कदम पे वो मेरे साथ थे। मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बट बीच में मेरी शादी हो गई। मैं कहूँगी कि शादी होना मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव फेज में टर्न हुआ। हालांकि मैं जो कर रही थी वो मथुरा में कर रही थी, बहुत लिमिटेड लोगों को ही मैं क्लासेस दे पा रही थी, बहुत लिमिटेड लोगों तक अपनी बात पहुँचा पा रही थी, बहुत लिमिटेड लोगों को ही के मन से ही इंग्लिश के डर को ख़त्म कर पा रही थी। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी हुई दिल्ली में। दिल्ली में आई मैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अब अपनी फैमिली को संभालो, घर को संभालो, नाउ यू आर मैरिड, अब आपकी शादी हो गई है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। बट माई हस्बैंड ही टोल्ड मी, निमिषा, कि आपका जो सपना है उसको पूरा करते हैं। मैंने दिल्ली में आके फिर से अपने करियर की शुरुआत करी। दिल्ली में आके मैं, मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे, हम इंटरव्यूज देने जाते थे, मैं वहाँ बोलती थी कि इज़ देयर एनी वैकेंसी फॉर इंग्लिश फैकल्टी, और वहाँ से वो लोग पूछते थे फ्रॉम वेयर आर यू। जब मैं आंसर देती थी कि आई एम फ्रॉम मथुरा, दे यूज़ टू से नो। वो लोग मेरा डेमो तक नहीं लेते थे, मुझे पढ़ाने का मौका तक नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास्ट को देख के, मुझे देख के वो लोग मना कर देते थे कि नहीं मैडम, कोई वैकेंसी नहीं है या फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक दिन ऐसा आया कि जब मेरी एक, मुझे एक ऑफर मिला सक्सेस मंत्रा करके इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ से, वहाँ पे मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक के बाद एक के बाद मैं आगे बढ़ती गई अपने करियर में। आज मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स हैं मेरे। आज मैं 4 बुक्स की ऑथर हूँ। सो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी अचीवमेंट्स शुरू हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम से। और वो निमिषा जो हमेशा डरी डरी सी रहती थी, सहमी हुई रहती थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी, शादियों में नहीं जाती थी, पार्टी में नहीं जाती थी, आज आप सभी के सामने खड़ी है और अपनी स्टोरी आपको सुना रही है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैंने अपने डर को मिटाया, वो 3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहली चीज़, अपने अंदर से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को मिटाइए। आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा काला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा दिखता हूँ, या मैं बोलूँगा वो सामने वाला क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में कैसा इम्प्रेशन लेगा, तो इन सारे डर को मिटा दीजिए। इन डर की वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। सामने वाला इंसान भी आपके जैसा ही है, वो आपसे बहुत ऊपर या बहुत सुपीरियर नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप बेस्ट हैं, यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं है। दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए। मिरर के सामने दोहराइए बातों को, बार बार रिपीट कीजिए, अपने एक्सप्रेशंस को देखिए, अपने वे ऑफ डिलीवरी को देखिए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन को देखिए। जितना ज़्यादा आप मिरर में उस बात को दोहराएंगे या जितनी बार आप डिलीवर करेंगे मिरर के सामने, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और जो कि पहली बात से बहुत कुछ रिलेटेड है, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह एक फियरलेस और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाएंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपनी जी जान लगाने के लिए और अपने डरों का सामना करते हुए उनको मिटाने के लिए। आप अपनी ये शुरुआत कब करने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं मुझे यही नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुँह पर तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सीवी लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया, एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोस।